न्यास साहब, इसका एक अजीब सी चीज है कि देखिए, आप दयानदारी से जिंदा रहना चाहते हैं, दयानदारी से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप बदिल होके एक तरफ होके बैठ गए। कल को यार शौकत साहब ये कहते हैं कि वहाँ तो बेईमानी बेईमानी झूठ ही झूठ है, वो मेरे बस का नहीं, मैं भी छोड़ के बैठ जाता हूँ। परसों फिर कोई और नेक आदमी छोड़ के बैठ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए जगह खाली करते जा रहे हैं जो दयानदारी के बरक्स किसी और तरीके से काम चलाना चाहते हैं, और इसका अंजाम क्या होगा? उसमें ये ज़रूर है कि आप ये कह सकते हैं कि साहब, अगर 1000 वकील में से एक दयानदारी से काम करता है तो 999 तो बदयानती से काम करेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक आदमी की आवाज़ क्या कर सकती है? अगर पूरा शहर तारीकी में डूबा है और आपके घर में सिर्फ एक मोमबत्ती है, तो आप वो आप गली में ना रखें, इससे कि पूरे शहर को रोशन तो नहीं कर सकती। ये सच है कि नहीं कर सकती? लेकिन ये तो है कि एक हद तक मखसूस दायरे के अंदर तो रोशनी फैला देगी। तो अगर पूरे शहर में लोग, जहाँ 85 लाख की आबादी है, उसमें 5000 लोग भी मोमबत्तियाँ लेके निकलाए, तो शहर का एक बड़ा हिस्सा रोशन हो जाएगा। तो एक मोमबत्ती जलती देख के शायद दूसरा कोई इस मोमबत्ती से मोमबत्ती जला ले। तो इस उम्मीद में अपनी अकलौती मोमबत्ती को बुझा नहीं देना चाहिए कि दूसरी सब जगहों पे अंधेरा है तो मेरी एक मोमबत्ती दुनिया में क्या रोशनी करेगी। सच्चाई और दयानदारी की आवाज़ हमेशा बुलंद होती रहे, हर एक आदमी को ना करे। तकलीफ़ें और दुख तो रहेंगे उसके, भारत सच्चाई के रास्ते में तकलीफ तो है। तो आप और कुछ नहीं तो पढ़ाना तो शुरू कर दीजिए। नहीं, वो तो देखिए, मैंने जैसे लास्ट जब दुआओं की बात हो रही थी तो शौकत साहब ने कहा कि सब, मैंने तो दुनिया की दुआ का कहा तो शाह साहब ने मुझे टकेगा सा जवाब दिया कि आपके लिए दुनिया की दुआ मैं नहीं करूँगा। तो मैंने एक बात कही थी कि असल में इनके साथ मेरा एक खसूसी ताल्लुक़ है, तो मैंने उस ताल्लुक़ के तहत जो मुझे हक हासिल है उस हक को एक्सरसाइज किया था, और उस खसूसी ताल्लुक़ के अंदर ये डर और खौफ बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं शौकत साहब को सच बात इनके मुंह पे बिल्कुल हार्श वर्ड्स में भी कहूँगा तो कोई ताल्लुक़ में रखना आएगा। वो डर और खौफ खसूसी ताल्लुक़ में कहीं है नहीं, तो इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं था अपना वो हक इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने इनसे सीधा कहा था कि शौकत साहब, मैं आपके लिए दुनिया की दुआ नहीं करूँगा। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि दुनिया की ख्वाहिश और दुनिया की माल व ज़र की हैसियत शायद इससे अंदाज़ा लग जाए, चलिए 2-4 मिनट ही के लिए दिल हिल जाएगा कुछ लोगों का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ ले गए थे शहर से बाहर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जन्नतुल बकी शहर से बाहर हुआ करता था, तो जब दाखिल होते थे तो जन्नतुल बकी के अंदर से ही दाखिल होते थे शहर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर में दाखिल हो रहे थे, सहाबा कराम साथ थे, तो शहर के एंट्रेंस पर एक बकरी मरी पड़ी थी, कई रोज़ की मरी हुई थी, उसमें कीड़े चल रहे थे और बदबू छोड़ी हुई थी उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के करीब ठहर के आपने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम में से कोई ये बकरी खरीदेगा और किस कीमत पे? तो सहाबा कराम ज़रा हैरान हुए, तो फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी तो मुर्दार है और उसमें सड़ा हुआ मुर्दार है जिसमें कीड़े चल रहे हैं, तो इसको कौन लेगा? तो आपने फरमाया, तो फिर समझ लो कि रब के नज़दीक ये दुनियावी आराम व आसाइश और इसकी माल वज़र की वैल्यू इतनी भी नहीं जितनी तुम्हारी नज़र में इस सड़े हुए मर्दार के जिस्म के एक बाल की है। तो किस्सा ये है कि अगर एक आदमी के साथ मेरा खसूसी ताल्लुक़ है तो मैं किस तरह ये गवारा करूँ कि वो रब से उस सड़े हुए मुर्दार के जिस्म के एक बाल से भी ज़्यादा हकीर चीज़ को वो मांगे? तो मैंने इनसे खुले लफ्ज़ों में कहा कि शौकत साहब, मैं आपके लिए दुनिया की दुआ नहीं करूँगा। और एक चीज़ मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि जिस दिन से मैंने इनसे ये कहा उसके बाद अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी आसान कर दी। ये नहीं मैं कह रहा पूरा आसाइश कर दी, मैं कह रहा हूँ आसान कर दी कि जिंदगी अल्लाह ने बड़ी आसान कर दी। उसकी आसानी का एक छोटा सा मैं झलकी आपको दे दूँ कि ये बहुत बिजी लॉयर थे, न सुबह का पता न शाम का पता, तब भी यही कपड़े पहनते थे ये और यही दो रोटियां खाते थे और इसी तरह गाड़ी पर चढ़े फिरते थे। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नई गाड़ी पर सवारी कराता है, ड्राइवर के साथ बिठाता है, परवरदिगार पहले से बेहतर रोटी दे रहा है जिसको आदमी एंजॉय करता खाते हुए, कपड़े वैसे ही पहनता है बंदा, हर साल मुल्क से बाहर का सफ़र करके आता, दो महीने की छुट्टी काट के आता बंदा, औलाद माशाल्लाह सेल्फ सस्टेनिंग है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं होने देता, तो ज़िंदगी इससे ज़्यादा आसान और क्या होगी। ऐसे ही है शौकत साहब आपकी ज़िंदगी का यही नक्शा है ना। तो मैं दुनिया की दुआ करके ऐसी गरीब को मुश्किल में फंसाता, अब ये कंफर्टेबल ज़िंदगी है आराम से, ना कोई गम है ना कोई फिक्र है, और ये भी नहीं कि ज़िंदगी के अंदर एक्टिविटी ना रही हो, एक्टिविटी भी है, तो परवरदिगार रिस्क तो अता कर देता है। तो आप सच्चाई का झंडा हाथ से छोड़ के बददिल होके बैठिए नहीं नया साहब, वो झंडा हर हाल में बुलंद रहना चाहिए। पता नहीं शाह साहब ने कैसे आपको कह दिया, मेरी समझ में आया, शाह साहब तो लोगों को भगा देते हैं जिनको जज की ऑफर होती है, तो शाह साहब कहते छोड़ दो यार इनकार कर दो जज नहीं बनना। वो एक दिन बेचारे वो हमारे जस्टिस एजाज साहब, वो उन दिनों अच्छा वो डिप्टी अटर्नी जनरल थे शायद, तो वो आए एक दिन घर पे, ये सब लोग बैठे थे, तो वो बेचारे दरवाजे में एंटर हुए, तो मैंने छूटते ही कहा कि इनकार कर दीजिए आप। वो बंदा थोड़ा सा परेशान ये हुआ कि कहीं शाह साहब धोखे में किसी और चीज़ का तो नहीं कह रहे, क्योंकि मैंने अभी सलामी किया है तो कह रहे हैं इनकार कर दीजिए आप। तो कहने लगे जी वो मैं असल में कुछ आपसे अर्ज करने आया था, कुछ वो ऑफर थी, मैंने कहा जी उसी का तो मैं कह रहा हूँ इनकार कर दीजिए आप। तो वो भी अल्लाह का एक ही नेक बंदा, उसने भी पलट के नहीं मुझे कहा कि जनाब मैं इनकार क्यों कर दूँ, मुझे हाई कोर्ट की जजी मिल रही है। तो वो गया जाके इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं बनना जज, तो बात आई गई हो गई। मेरा ख्याल तीन महीने या चार महीने गुजरे, वो कहीं मिलने आ गया, गलती उनसे ये हो गई। तो मैंने कहा कि अब आपको ऑफर आएगी जज बनने की, अब जज बन जाइए। तो अगलों ने घर से बुला के उसको जज बना दिया, बल्कि कन्विंस करके जज बना दिया कि ये जज बनना ज़्यादा बेहतर है, तो वो यूँ जज बन गए। तो मैं तो लोगों को मना करता हूँ कि भाई क्यों इस अजाब में पड़ते हो, कंधों पर इतना बड़ा बोझ आ जाएगा आपके जज बनने का, एक एक चीज़ के लिए जवाबदेह हो गए अल्लाह के हजूर आप, तो ये क्या आपको ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती कि आप जवाबदेह नहीं हैं चीज़ों के लिए, तो मैं क्यों किसी अपने जानने वाले को अजाब में फंसाऊंगा। नहीं जगह ना छोड़िए, वो तो फिर आप बुराई को जगह दे रहे हैं, बुराई को रास्ता मत दीजिए, सच्चाई के लिए लड़ते रहिए। और जहाँ तक ये दिल की बात है, तो दिल तो ज़िद्दें करता ही रहता है, कभी किसी रंग में कभी किसी रंग में, धमकाता भी रहता है कि मैं बंद हो जाऊंगा, मैं धड़कना छोड़ दूंगा, तो उसको कहिए छोड़ दो भाई, धमकियां दे देते हो जब चाहे छोड़ जाओ, हमें क्या लेना है तुमसे, क्योंकि वो दर हकीकत ना मेरे ना आपके हुक्म का पाबंद तो है नहीं, वो तो किसी और के हुक्म का पाबंद है। तो जब उससे इशारा होगा धड़कन बंद करने का, तो धड़कन बंद कर देगा, ना आपसे पूछेगा ना मुझसे पूछेगा, तो फिर जिस बात पे हमारा कंट्रोल नहीं उससे डरना किस बात का। तो उसे कहिए धड़कना छोड़ना चाहते हो छोड़ दो जाओ, जब चाहे छोड़ दो। तो ये डर और खौफ जो है ये निकाल देना ही बेहतर। वो एक सिविल सर्वेंट थे, इंतकाल फरमा गए, रिफत पाशा शेख है, हाँ वो बहुत सी असाइनमेंट्स उनके पास रहीं, ये अपने कैरियर के शुरू में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर भी रहे, फिर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान भी रहे। उनको एक ज़माने में ये दिल का मर्ज हो गया था, हार्ट प्रॉब्लम थी इन्हें, तो जब मुझे पता लगा तो उन दोनों मेरी एक गवर्नमेंट के अदारे से ट्रांसफ़र होकर मैं दूसरे में जा चुका हुआ था, और उस अदारे में मेरा ऑफिस जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के आते थे। तो जब मुझे पता चला तो मैंने इनसे कहा कि देखिए जब डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, तो आप क्यों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं? कि आपसे मिलने को जी चाहता है, तो मैंने कहा आप मुझे टेलीफोन कर दिया कीजिए, तो मैं आपके घर पे हाजिर हो जाया करूँगा। दरमियान में फिर ये कोई दो महीने नहीं आए, एक दिन देखा कि फिर चले आ रहे हैं। मैंने पाशा साहब आपसे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है सीढ़ियाँ चढ़ने को, आप फिर आ गए। बड़ी खूबसूरत बात उस बंदे ने कही। उसने कहा जी वो मना तो किया है और मैं भी नहीं आ रहा था इस डर से कि कहीं दिल बंदी ना हो जाए मेरा, लेकिन आज बैठे बैठे ऐसे ही ध्यान आया मुझे कि रब ने जब तीन चीज़ें मुअय्यन की हैं तो मैं डरता किस बात से हूँ? कि जब मेरे मौत का वक्त मुअय्यन है और वो टल नहीं सकता तो मैं किस बात से डर रहा हूँ? फिर मेरे मौत का मकाम भी मुअय्यन है कि किस जगह मेरा दम निकलेगा, तो मैं खौफजदा होकर घर में क्यों बंद हूँ? और मेरी मौत का तरीका भी मुअय्यन है, किस तरह से मुझे मरना है, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो यूं मैं आ गया हूँ कि जब चीज़ें ही मुअय्यन हैं तीनों, उस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं, तो डर और खौफ किस बात का है मुझे? तो चलो चलते हैं शाह साहब के पास, जाके कॉफ़ी पी के आते हैं। वो बंदा उसके बाद आता रहा काफ़ी देर, फिर जनरल ज़िया की मार्शल लग गई थी तो उनका केस रिकंसिडर हुआ, तो जनरल ज़िया ने उन्हें रीइंस्टेट कर दिया कि ज्यादती हुई थी इनके साथ, कि भुट्टो साहब ने ज़ाती दुश्मनी के तहत इन्हें डिसमिस किया था। तो रीइंस्टेट हो गए, तो एक स्पेशल असाइनमेंट निकल आई यूएई में, तो वो वहाँ यूएई भेज दिए गए एम्बेसडर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो वहाँ तीन साल वो रहे यूएई में हमारे एम्बेसडर, रिटायर हो गए बाद में यहाँ, फिर उसके बाद भी मेरे ख्याल 10-12 साल जिंदा रहे। अभी कुछ देर पहले ही इंतकाल हुआ उनका। तो उस बंदे ने बहुत ही खूबसूरत एक सबक पढ़ाया कि जब वक्त मौत का वक्त मुअय्यन है, मौत का तरीका मुअय्यन है और मौत का वक्त मुअय्यन है, तो खौफ किस बात का है? तो न्याज साहब छोड़िए, आप ये दिल के नखरे मत पालिए, ये कुछ दिन पहले एक साहब ने यहाँ एक सवाल किया था कि तकवा के बारे में, तो उस वक्त चूँकि मौजू कुछ और था तो वो बड़ा मैंने मुख्तसर जवाब दे दिया था कि तकवा के मायने ये हैं कि रब ताला ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उस पर अमल किया जाए और जिस चीज़ से रोक दिया उससे रुक जाए इंसान, तो ये तकवा है। लेकिन तकवा समहौर दी अदर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बेपनाह डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तकरीबन हर बुज़ुर्ग ने, हर साहिब इल्म ने तकवा की डेफिनेशन अपने तौर पर बयान की है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार अभी काब से पूछा था कि तकवा किसको कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि या उमर, कभी आप खारदार रास्ते से गुजरे हैं, ऐसा रास्ता जहाँ कांटे फैले हुए? तो जवाब दिया कि हाँ बारह गुजरा। कैसे गुजरते हैं वहाँ? उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े समेट किए और बड़ी एहतियात के साथ कदम रखते हुए बच बचा के कांटों से गुजरता हूँ। तो फरमाया फिर तकवा दुनिया में उसी एहतियात से और अपने आप को सिमट के संभल संभल के पांव रख के चलने का नाम तकवा है। फिर एक बुज़ुर्ग ने ये कहा कि तकवा इस चीज़ का नाम है कि इंसान दूसरों के लिए वही पसंद करे जो खुद अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। और जनाब सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब के नज़दीक तकवे का मकाम इस तरह से है कि एक शख्स उनके पास आया और उसने सलाम किया, तो आपने माथे पर त्यूरियाँ डाल के उसको वालेकुम अस्सलाम कहा। तो कुछ देर के बाद वो आदमी चला गया, तो इनके एक शागिर्द ने इनसे पूछा कि हज़रत आप तो बड़ी खंदा पेशानी से जवाब देते हैं सलाम का, लेकिन आज ये क्या हुआ कि इस आदमी ने आपको सलाम किया और आपके माथे पर त्यूरियाँ पड़ी थीं और बड़ी खुश्क लहजे में आपने वालेकुम अस्सलाम कहा? तो फरमाया कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है और वो उसे वालेकुम अस्सलाम कहता, تو رب تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں میں سے سلام کرنے والے اور وعلیکم السلام کہنے والے دونوں مسلمانوں کے درمیان 100 نیکیاں تقسیم کرتا ہے، اور ان 100 نیکیوں میں سے 99 نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں جو بڑی شگفتہ روی کے ساتھ یا سلام کرتا ہے یا جواب دیتا ہے، اور 1 نیکی اس کو ملتی ہے جو ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے وعلیکم السلام کہتا ہے۔ تو دوسرے انسان کی نیکی اور بھلائی میں اضافے کے لیے کام کرنا، دوسرے شخص کی بہتری کے لیے سلام کرنا اور اس دوسرے شخص کی آخرت سنوارنے کے لیے کام کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ سری سختی کے فلسفی کے مطابق اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے۔ در حقیقت تقویٰ حقیقت میں وہی ہے، اسی چیز کے نام ہے جو اس دن میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی، وہ مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ آپ اس کو پھیلا کے جتنے بڑے کینوس پر چاہے لے جائیے، لیکن بات گہرائی سے سوچنے سے وہی نکلے گی کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے جن سے رب تعالیٰ نے منع کر دیا، اور ان چیزوں کو کرنے میں پیش رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی کے اندر تمام چیزیں کور ہو جائیں گی۔ جو ڈیفینیشن ان بزرگوں نے دی ہے، در حقیقت وہ اسی کے اندر آ کے کور ہو جاتی ہے۔ اور کچھ بزرگ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ تقویٰ دوسروں کے ساتھ احسان کے سلوک کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، وہ بھی اسی میں کور ہو جائے گا۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ایک جگہ جیسے فرمایا کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، اور ساتھ ہی آگے ایک جملہ کہہ دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے احسان کا سلوک کرنے والوں کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں انہیں یاد کیا۔ تو آپ کسی رنگ میں بھی تقویٰ کی تعریف کر لیجئے، بات وہیں جا پہنچے گی کہ ان چیزوں سے انسان رک جائے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور ان چیزوں میں آدمی کوشش کرے جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے کرنے کو۔ آج میرے خیال میں ان صاحب کے سوال کا تقویٰ کے بارے میں جواب کچھ تھوڑا زیادہ واضح ہو گیا ہوگا۔ نہیں، دیکھیے، رب تعالیٰ کا جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بدلے کی اجازت دے دی رب نے، اس میں حد مقرر کر دی کہ صرف اسی قدر جس قدر آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب یہاں تک تو کرنے کا حکم ہے، اجازت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، اس احتیاط کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، اس حد پہ رک جائیے جس حد تک آپ کے ساتھ زیادتی۔ لیکن آگے جو بات کہی وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، یہ ایک قدم آگے ہو گیا۔ کوئی آپ سے قرض لے گیا، حسب وعدہ اگر اس نے واپس نہیں کیا تو اس کو ریمائنڈ آپ کرا سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو کہ صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں نہیں، آپ واپس کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو تمہارا مقروض ہے اس کو سہولت دو، اس میں چھوٹ دینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ لیکن اگر رب کی سنت پہ آپ عمل کریں گے تو اس کو معاف کر دینا بہتر، بھلا دیجئے۔ اور اس انداز میں یہ مت کہیے کہ بھائی تمہارے حالات بڑے خراب ہیں تو میں تمہارے حالات سے متاثر ہو کے میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا، وہ تو چھوٹا پن ہو جائے۔ تو آسانی سے اس کو آدمی کہہ دیتا کہ دیکھو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، تم اپنی دوسری ضروریات پوری کر لو پہلے، تو آخر پر اگر تمہارے پاس ہو تو بے شک واپس کر دینا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ دو بھائیوں کے درمیان معاملہ تھا، وہ کوئی قرض نہیں تمہارے ذمہ میرا۔ تو یہ سنت رب ہو گئی، اگلے کو معافی کر دیا۔ تو یہ ایک قدم آگے جانے والی بات جو آپ نے کہی، تو رب کے سارے کام جو ہیں وہ تو احسان کے سلوک کے ہیں، तब मेरे नज़दीक तो रब ताला का शुक्र, मैं तो ज़ाती तौर पे ज़ुबान से शुक्र करने में बिलीव नहीं करता, मेरे नज़दीक तो अमली शुक्रगुजारी ही शुक्रगुजारी है असल में। और वो अमली शुक्रगुजारी किस तरह से है कि इंसान अपने आप को बिल्कुल आजिज़ और बेबस बंदा जाने, दिल से दूसरों को अपने से बेहतर समझे और अपने आप को सबसे कमतर जाने। हम लोग अल्लाह के रिस्क अता करने पर उसकी शुक्रगुजारी ज़ुबान से करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बड़ा रिस्क अता किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हम किसी पीर साहब के पास जा रहे होते हैं ये कहने के ज़रा दुआ कर दीजिए कि मेरा फलां काम हो जाए। अब ये तो शुक्रगुजारी नहीं है, ये तो एक तरह से रब का शिकवा है। अगर इसके बरक्स ये हो कि जो कुछ मेरे पास है, ज़हनी माली जिस्मानी सलाहियतें जो कुछ मेरे पास हैं, ये मेरी नहीं है, मेरे रब की अता करदा हैं, मेरे पास तो ये अमानत हैं। और अमानत इस शर्त के साथ हैं कि जो मेरी ज़ाती ज़रूरत है उसके मुताबिक मैं इसमें से इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाकी सबका सब दूसरों का हिस्सा है, कोई आकर ले जाए। तो जो आकर ले जा रहा है इस अल्लाह की अता करदा अमानत में से, वो अपना हक लेके जा रहा है, इसलिए मेरा उस पर कोई एहसान नहीं, कोई ले जाए। तो सिद्क दिल से अगर किसी ने इस पे अमल कर लिया सच्चे दिल से, तो मेरे नज़दीक ये आला तरीन शुक्रगुजारी है, ये सही शुक्रगुजारी ये हो जाएगी। क्योंकि आप दूसरे को उसका हक समझ के अपनी मेहनत की कमाई दे ही नहीं सकते तब वक्त कि आपको इस चीज़ का यकीन ना आ जाए दिली तौर पर कि मेरे पास जो कुछ है ये मेरे रब का अता करता है, ये उसकी अमानत है और इस अमानत में से मुझे इजाज़त है अपनी जायज़ ज़रूरियात पर खर्च करने का, बाकी सब उसके बंदों का हिस्सा है, कोई ले जाए आगे, क्योंकि मेरे रब की मलकियत है मेरी नहीं। तो ये शुक्रगुजारी मेरे नज़दीक अमली शुक्रगुजारी हो जाएगी। इसी तरह जो ज़हनी सलाहियतें अल्लाह ने बख्शी हैं, वो ज़हनी सलाहियतें जिस हद तक मेरी और मेरे ख़ानदान के काम आती हैं वो मेरी इजाज़त है, क्योंकि ये ज़हनी सलाहियतें रब की अता करदा हैं, उसकी अमानत है। और अगेन मुझे इजाज़त यही है कि मैं अपने और अपने ख़ानदान की जायज़ ज़रूरियात के लिए इसे इस्तेमाल कर लूँ। फिर मेरे ऊपर अल्लाह के दूसरे बंदों का हिस्सा है, हक है कि मैं अपनी ज़हनी सलाहियतों से उनको फ़ायदा पहुँचाऊँ। अगर कोई इल्म अता किया है अल्लाह ने मुझे, तो उससे अल्लाह के दूसरे बंदों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। फ़ायदा इसलिए नहीं पहुँचना चाहिए कि मैं फ़ायदा दे रहा हूँ, फ़ायदा इसलिए उनको पहुँचना चाहिए कि ये उनका हक है, उनका हिस्सा है, वो ले जाएँ अपना हिस्सा। तो इनफैक्ट जो आदमी मुझसे अपना हिस्सा लेके जा रहा है वो मेरी मदद कर रहा है, टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी, मुझे उस बर्डन से आज़ाद कर रहा है। इसी तरह जिस्मानी क़ुव्वत जो है मेरी, वो दूसरों के काम आनी चाहिए, दूसरों के काम करने में, भाग दौड़ करने में काम आनी चाहिए। पहले अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात के लिए भाग दौड़ करनी, उसके बाद जो जिस्मानी क़ुव्वत बच रही वो दूसरों के लिए सर्फ होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका हिस्सा है, वो ले जाएँ। तो ये शुक्रगुजारी है मेरे नज़दीक, लेकिन इसके अंदर एहतियात एक है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नेकी और तकब्बुर में सिर्फ बाल बराबर फ़र्क है, हेयर लाइन डिफरेंस है सिर्फ, कि जब तक इंसान नेकी करता है और उसे ये अदराक नहीं होता कि मैं नेकी कर रहा हूँ, नेकी को नेकी समझ के न करे तो नेकी है। जहाँ ये एहसास आ गया कि मैं नेकी कर रहा हूँ, नेकी न रही तकब्बुर हो गया, क्योंकि फिर उसके अंदर वो एहसास फले फूलेगा कि मैं नेक हूँ, मैं नेकी कर रहा हूँ, यही तकब्बुर है। बहुत आसानी से हो जाएगा कि अगर हर वक्त ये एहसास रहा कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सका, मैं बहुत कुछ कर सकता था लोगों के लिए लेकिन मैं कर नहीं सका, नालायकी में मैं बैठा रह गया, हर वक्त ये एहसास। इसी तरह इबादत के अंदर ये एहसास कि मेरा रब तो लायक इबादत है और उसके जो मुझ पर एहसानात हैं वो तो बहुत ही आला दर्जे की बंदगी का तकाजा करते हैं, तो मैं तो अपने रब का नाम भी सही नहीं ले सका, बचा रहेगा तकब्बुर से। और जहां ये एहसास हुआ कि मैं 5 वक्त की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ, आज तक मैंने कोई नमाज कजा नहीं की, मैं तो पुकारता हूँ अपने रब को, जहां फुर्सत मिलती है मैं तस्बीह लेके बैठता हूँ, जहां ये एहसास आया ये तकब्बुर हो गया, ये गंवा देगा सब इबादत को। तो इस एहसास को दूर रहना चाहिए और ये एहसास हर वक्त पलना चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सका, मुझ पर फर्ज था अल्लाह के दूसरे बंदों की मदद करना और अल्लाह के दूसरे बंदों का हक था मेरे ऊपर कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो मैं कर नहीं सका, भले सारा वक्त कर ही रहा हो लेकिन एहसास ये दिल में रहे कि मैं कुछ कर नहीं सका किसी के लिए, तो तकब्बुर से बचा रहेगा। ये इसी से तो मैं बचना चाह रहा हूं कि ये पहला जीना है तकब्बुर की तरफ ले जाने के लिए, कि मेरे दिल में ये आ गया कि मैंने किसी के साथ नेकी की और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी कि मैं ये नेकी कर लूँ। ये पहला कदम मैंने रख दिया उस जीने पर जो तकब्बुर की तरफ ले जाएगा मुझे। तो जहाँ मेरे दिल में ये ख्याल आए कि मैंने नेकी की, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर लूँ, वहाँ फौरन मैं अगर लाहौल पढ़ लूँ कि मैं किस काबिल हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी के साथ नेक सलूक करने वाला, मैं तो बड़ा हकीर तरीन इंसान हूँ, मैं कब ये इस काबिल ठहरा कि मैं नेकी कर सकूँ, बच गया इंसान, तो फिर मजीद नेकी की तरफ जाएगा। ये एहसास उसके लिए महमीज का काम करेगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सका, मुझे नेकी करना है ताकि रब राजी हो जाए मुझसे, तो मजीद नेकी की तरफ दौड़ेगा वो फिर। तो इस एहसास से बचना चाहिए हमें, किस सेंस में? देखिए, पहले किसी महफिल में जिक्र छिड़ा तो गलबन डॉक्टर यार खालिद साहब ने ही ये पॉइंट उठाया था, तो मैंने उसे भी कहा था कि कुरान पाक में इस्तारों से काम लिया गया है, रब ताला ने इंसान को चूँकि तखलीक किया है, इंसान की नेचर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे एक तस्वीर की खूबियों और खामियों को उस मुसव्वर से बेहतर कोई नहीं जानता जिसने वो तखलीक की है, इसी तरह रब चूँकि खालिक के कुल है, तमाम चीज़ों का खालिक है वो, उसने हमें तखलीक किया, हमारी कमज़ोरियों को, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को उससे बेहतर कोई नहीं जानता, हमारी साइकोलॉजी को और हमारी नेचर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए जब उसने कुरान पाक नाजिल फरमाया तो उसने हिदायत की वो तरकीब इस्तेमाल की जो इंसान को सबसे ज़्यादा भा जाएगी, जो इंसान पर सबसे ज़्यादा असर कर जाएगी। तो कुरान के अंदर अगर आप देखें तो कुरान के 3 डिस्टिंक्ट पहलू दिखाई देते हैं। एक जहां रब ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है, एक पहलू उसका वो है जिसमें रब अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं वो हूं जिसने तुम्हें तख्लीक किया, मैं सबसे बढ़कर रहीम व करीम हूं, मैं रहमान हूं, मैं राजिक हूं। एक पहलू वो है जहां पर वो इंसान को ये कह रहा है कि तुम इस तरह से ज़िंदगी बसर करो, तालीम दे रहा है। और फिर एक पहलू कुरान का वो है जहाँ उसने इंसान को तरगीब भी दी है और धमकाया भी है। तो जहाँ उसने तरगीब दी है इंसान को नेकी की तरफ आने की, वहाँ उसने पुरानी मिसालों से भी काम लिया है और इनामात भी दिखाए हैं कि ये इनामात मिलेंगे तुम्हें, और फिर उसने धमकाया भी है अजाब से भी और जहन्नुम से भी, और इसी ज़िम्न में उसने जगह जगह इस्तारों से भी काम लिया है। अब हम चूंकि अहले ज़ुबान नहीं हैं अरबी की हद तक, हम में से बेशतर की मादरी ज़बान उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, और कौमी ज़बान हमारी सबकी उर्दू है, तो हम उन अरबी के उन बारीक इस्तारों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब जो लफ्ज़ ईमान इस्तेमाल हुआ और जिन मायनों में सूरह यासीन में इस्तेमाल हुआ, वो लफ्ज़ है साहिब ईमान के लिए, और साहिब ईमान को मोमिन कहा है, कुरान में मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो साहिब ईमान के लिए हुआ। अब हम जहां ईमान को, ईमान से मतलब लेते हैं मोमिन, उससे हम मतलब जो लेते हैं वो मुसलमान का लेते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। जो इंसान जिसने अल्लाह ताला की तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर जो ईमान ले आया, या दूसरे लफ्ज़ों में पहला कलमा जिसने पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया, अब वो मुसलमान है। और जो उसने इस्लाम के जो बुनियादी रुकन हैं उन पे भी ईमान लाया, उन पे अमल भी किया, तो भी मुसलमान रहा। लेकिन अगर वो ईमान लाया और उसकी तस्दीक बिलकल्ब कर दी उसने, और उसके बारे में रत्ती बराबर शुबा ना रहा उसके दिल में, और उससे पलटा नहीं, और फिर वो इस्लाम के पांचों रुकन जो थे उन पर अमल लाया करता रहा, और फिर जहाद भी सैफ किया जब जरूरत पड़ी, तो वो मोमिन हुआ, वो साहिब ईमान हो गया, उसके लिए जन्नत है। ये फर्क है, वो जहां सूरह यासीन में जो ईमान यूज हुआ है लफ्ज, वो मोमिन के ईमान के नहीं। ऐसा है कि रब ताला ने जो अपना पहला पैगाम नाजिल फरमाया था वो उस दौर के लोगों की ज़हनी इस्तेदात के मुताबिक था। उसके बाद आने वाले सहीफे वो एडवांस होते गए जूं जूं इंसान का ज़हनी इर्तका होता गया। फिर जो आसमानी किताबें उतारी गईं वो उस दौर के इंसान के ज़हनी मयार के मुताबिक थी, उसके आईक्यू लेवल के मुताबिक थी। उस दौर में आने वाले पैगंबर जो थे वो पैगाम लेकर आए, उस दौर के इंसानों के लिए पैगाम लाए। और फिर एक अजीब चीज़ आपको दिखाई देगी अगर थोड़ा सा गहराई से देख लें कुरान पाक को, तो कुरान में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई देगी आपको। जितने पैगंबरों का जिक्र कुरान में आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ख़ास तौर पे उसके अंदर जिक्र एक और आया है पैगंबर के साथ ही, कि वो अपनी बस्ती और अपनी कौम या अपने इलाके के लोगों के लिए उतारा गया है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र देख लीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अपनी कौम का लफ्ज़ साथ आया उसके, लोकलाइज्ड है वो। इसी तरह जो किताब का जिक्र आया कुरान से पहली किताबों का, वो भी उस मकाम और उस इलाके और उस कौम के लिए ही मखसूस है। उसमें जिक्र आया कि हमने उस कौम पर ये किताब उतारी। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ है, या यूं कहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं दुनिया में, तो ये वो दौर था जबकि इंसानी जहन का इर्तका मुकम्मल हो चुका था। जो बुनियाद थी वो बुनियादें मुकम्मल हो गई थी, उसके ऊपर से बिल्डिंग बनना बाकी थी। उस वक्त तक व्हील दरियाफ्त हो गया था, यूं कहिए आप साइंस की अगर ज़ुबान में बात करेंगे तो व्हील की ईजाद हो चुकी थी। अगर बात की आने वाली तमाम साइंसी ईजादात को देखें, उन सब की बुनियाद व्हील पर कायम है। तो इर्तका उस वक्त तक मुकम्मल हो गया था उसकी बुनियाद का, उसके बाद बिल्डिंग मुकम्मल बनती गई है, अब तक बन रही है, हम सीख रहे हैं, हर बुनियादें मुकम्मल हो गई थी। तो उस दौर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया कि ये आलमीन के लिए रहमतुल्लिल आलमीन लफ्ज़ है, और इसी तरह वो पैगम्बर हैं कुल कायनात के लिए। और कुरान उतारा गया उसमें भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों की भलाई के लिए उतार लिया गया, वो भी पूरी दुनिया के लिए कुरान को उतारा गया, ये उसके अंदर मेंशन है। ये फ़र्क है। तो कुरान से पहले जब भी जिस दौर का भी कोई जिक्र आया है और وہ مخصوص ہے اس قوم کے لیے، اس کتاب کے پیروکاروں کے لیے، اس پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے. تو انہوں نے اپنے اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو ایمان لے آئے وہ بخشے گئے، اس وقت تک وہ جنت میں گئے، کیونکہ پیغام ہی اتنا تھا صرف. تو ان پہ فرض یہی تھا کہ جو پیغام آیا ہے، جو پیغمبر اترے ہیں، ان کی وہ پیروی کر لیں، ان کی اطاعت کر لیں، اس پیغام کی اس پہ عمل کر لیں. تو جس نے اس مختصر پیغام پر، ارلی سٹیج کے پیغام پر عمل کیا، وہ اس وقت کے حساب سے جنت میں گیا، لمٹ تھا، لمٹڈ تھا. تو وہ تو اس دور کے ٹرمز آف ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی ساری بات. نہیں، اس میں ایسا ہے، دیکھیے اس کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو کلیئر نہیں کر پائے بات کو. ایسا ہے کہ سبجیکٹ تو فزکس ہی ہے یا میتھمیٹکس ہی ہے، اس میتھمیٹکس کو کلاس 3 کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ بھی میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، میتھمیٹکس وہی ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے، لیکن لیول کا فرق ہے. کیوں؟ وہ اسٹوڈنٹ سیکھتا آیا ہے اور اس کے ذہن کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے. کلاس 8 تک پہنچتے پہنچتے وہ اس لیول کے میتھمیٹکس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کلاس 8 کے لیول کا میتھمیٹکس پڑھایا جا رہا ہے. پھر وہی اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ میں جا کے میتھمیٹکس کو پڑھتا ہے. میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہی رہا، صرف لیول چینج ہوا ہے. پھر اس نے ماسٹرز جب وہ کر رہا ہے میتھمیٹکس میں، پر تو وہ میتھمیٹکس ہی رہا ہے، اسٹوڈنٹ بھی وہی ہے، لیکن میتھمیٹکس کے لیول کا فرق ہو گیا ہے، لیول آف لرننگ کا فرق ہے. تو میسج من جانب اللہ ہے، میسج آیا بھی پیغمبر ہی کے ذریعے ہے، ڈیوائن میسج ہی کہلائے گا وہ. جیسے ہر کلاس میں پڑھایا جانے والا میتھمیٹکس میتھمیٹکس ہی کہلائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے یا کمپریہنسو ہے. وہ میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس ہی رہے گا جس کلاس میں بھی پڑھایا جائے، وہ لیول کا فرق ہے. تو اسی طرح ڈیوائن میسج تو ڈیوائن میسج ہی تھا، لیکن چونکہ وہ رب ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور ہماری سائیکالوجی سے واقف ہے، ہماری استعداد سے واقف ہے، تو اس نے میسج اس دور کی استعداد کے مطابق، ذہنی استعداد کے مطابق اتارا ہے. تو آپ اس کو کوئی اور نام دے نہیں سکیں گے، ڈیوائن میسج ہی رہے گا وہ. نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر بھی اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو اسلام میں بھی لیولز موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیے واپس، وہاں پہ اگر قرآن کو غور سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی جگہوں پہ رب تعالیٰ نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے لوگوں کے درمیان. اس دور میں ایسے مسلمان بھی ہوئے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے تھے، تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے وہ خاموش رہتے تھے، اللہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، خاموشی اختیار کرتے تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کافروں میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو کافر ظاہر کر دیتے تھے، مسلمانوں میں آتے تھے تو مسلمان کہہ دیتے تھے، جن کو منافق کہا گیا. پھر ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے کہ بدترین اذیتوں کے جواب میں بھی وہ اعلان اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہے. تو یہ تو ہمیشہ ہی قائم رہتے ہیں لیول، ان کے لیے انعامات ویری کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی ذکر ہے. دیکھیے اسلام تو ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. اسلام نام ہے کچھ اصولوں کا، قواعد کا، تو وہ بنیادی قواعد اور اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. جس طرح شریعت کے بنیاد قائم ہیں کتاب اللہ پہ، حدیث پہ، سنت پہ اور پھر اجماع پہ، کہ کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اس کے رائج ہونے کو دیکھنا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اس میں قرآن کیا کہتا ہے. اگر کتاب میں چیزیں واضح ہیں، بالکل احکامات موجود ہیں، تو پھر ہم ان کی پابندی کریں گے. اگر کسی چیز کے بارے میں احکامات قرآن پاک میں نہ ملیں تو ہم حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور اگر کوئی چیز حدیث میں نہ ملنے پائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، ہم اس کی اتباع کر لیں گے. اور اگر کہیں سے ہمیں کوئی نظیر نہ ملے، صحابہ کرام سے بھی نظیر نہیں ملتی کوئی، تو اس پر علماء کا اجماع کیا جائے گا کہ ایسے علماء جن کے بارے میں سب متفق ہوں کہ وہ صاحب علم ہیں، وہ مل کر بیٹھ کر کتاب و سنت سے انالوجیز لے کے اس کے قریب ترین معاملات میں جا کے تو پھر ایک فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے. تو یوں شریعت وجود میں آتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ صاحب ہوائی جہاز سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اگر کوئی شخص شرارت سے ایک دلیل یہ لے آئے کہ صاحب دشمن کی بے خبری میں اور اس کی پشت میں چھرا گھونپنا ناپسندیدہ ہے، تو ہوائی جہاز سے حملہ کرنا دشمن پر تو بین ہی بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی دشمن کو بغیر للکارے خاموشی سے اس کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیں آپ، تو یہ تو غیر اسلامی ہے. اگر کوئی یہ سوال اس طرح سے شرارت سے لے آئے، جو آتے رہتے ہیں، تو اب کتاب کے اندر F-16 کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، سنت میں نہیں ملے گا، تو ایسے موقع پر اجماع کیا جائے گا. اور جو علماء جن کا علم مستند ہے، جن کی شخصیت غیر متنازع ہے، وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو پہلے سے انالوجیز موجود ہیں ہمارے پاس، ان انالوجیز پر کو اس پر منطبق کر کے دیکھا جائے کہ F-16 سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو اس طرح سے ہم لے لیں گے. تو یہ کہنا کہ صاحب آج کے حالات کے اندر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن کر دی جائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں، تو وہ غلط ہے. اس لیے میں نے آپ کو شریعت کی تفصیل عرض کر دی. صحیح بات. پیچھے اس کے آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کے پاس فراری کی سپورٹس کار ہے، 110 horsepower، اس کی ریٹ آف ایکسلریشن جو ہے وہ 3.2 seconds ہے 0 to 60 miles an hour، اور ٹاپ سپیڈ اس کی 200 miles per hour ہے. میرے پاس 1948 ماڈل کی موریس ہے جس کی ریٹ آف ایکسلریشن جو ہے وہ 15 seconds ہے 0 to 60 miles an hour کے لیے، اور ٹاپ سپیڈ اس کی 70 miles per hour ہے. اب کیا ہم دونوں کی کاروں کے لیے ٹریفک رولز مختلف ہوں گے یا ٹریفک رولز دونوں پر ایکولی اپلیکیبل ہوں گے؟ اسی طرح اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ فالٹ کس کا تھا، رولز ہم دونوں کے لیے وہی اپلائی ہوں گے جو قانون نے بنائے ہیں، یا دونوں کے لیے ڈفرینٹ کر لیے جائیں گے؟ کیا نہیں ایسا ہے کہ چاہے کار اینٹیک ہے یا لیٹسٹ ورژن کی ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو پولیس والا اس کو یہی دیکھے گا کہ گاڑی پیچھے سے لا کے ماری گئی ہے یا سامنے سے ماری گئی ہے. اگر پیچھے سے ہٹ کی ہے فراری، تو جرم پھر بھی فراری کا ہے. اگر پیچھے سے 1948 ماڈل کی موریس نے ہٹ کیا ہے تو بھی جرم وہی گنا جائے گا. اگر رائٹ سے آنے والے کا رائٹ آف وے ہم نے کاٹا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو فالٹ ہمارا ہے، چاہے آپ فراری میں ہیں یا 1948 ماڈل موریس میں ہیں. تو بالکل صحیح ہے. قانون اس کو نہیں لیتا، قانون یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کی گاڑی کو جو سپیڈ ہے اس سے ڈسٹینس 50% زیادہ کر کے پلس 2 seconds ٹائم الاؤ کیا جائے گا اس پہ، چاہے وہ کوئی سی گاڑی ہو. اب اسی طرح اسلام کے رولز اپلیکیبل یا آپ
घोड़ दौड़ के अंदर देख लें कि एक घोड़ा अड़ियल है और दूसरा घोड़ा टेम्ड नेचर का है, तो रेस के कवानीन दोनों के लिए एक से हैं या मुख्तलिफ होंगे? एक होंगे ना। इसी तरह अगर कोई शख्स तुंदखू है और दूसरा नर्म रूह है, तो इस्लाम के कवानीन तो दोनों पे यकसां तौर पे ही एप्लीकेबल हैं, और उसमें जो तुंदखू है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है सरकशी से और तल्ख बयानी से, लोगों से लड़ने भिड़ने से। तो उसे करना ये पड़ेगा कि वो सबसे पहले अपने आप को नर्म रवि की तरफ लाए, क्योंकि वो बड़ी पसंदीदा खूबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नर्म रो, नर्म खू और नर्म गुफ्तार हस्ती थे। तो आप उस इंसान को मेहनत करके उस लेवल पे आना पड़ेगा, फिर नेकी आसान हो जाएगी उसके लिए। यानी वो तो उसकी स्केल और ताकत पर था ना, जो उसकी तंदखुई की वजह से नहीं था। नहीं, वो उनका सवाल असल में कवानीन के मुतालिक था कि इस्लामी कवानीन जो हैं, इस्लामी इस्लामिक प्रिंसिपल्स, वो एक तंदखू आदमी के लिए मुख्तलिफ हो जाते हैं, उसमें नरमी आ जाती है कि यार ये तो वो सवर आदमी है, इसको ये 10 गुना माफ़ हैं, और एक नर्म इंसान जो है उसकी सख्ती है क्योंकि उसके लिए आसान है नेकी करना। तो ये तमाम चीज़ें इस्लाम के अंदर, तो इन्हीं चीज़ों को तो तोड़ा है रब ने। जनाब जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी
कलमा पढ़
जी जी
लेकिन उसके दर्जात
बहुत बुलंद थे,
आदम से भी ऊपर चले,
बहुत बुलंद थे।
मेरा सवाल ये है, और अगर ताहिर कादरी सही कहे तो फिर ये कहां का इंसाफ है कि मैं एज फरहाद सारी उम्र पहाड़ खोदता रहूं, दूध की नहर निकालूं,
उसमें ऐसा है, ये जो वाक़या आप बता रहे हैं इसके अंदर ज़रा सा यूँ देखिए, हमें इसमें ये समझना पड़ेगा, आप यूनिट को कमांड कर रहे हैं, एक आदमी आपकी यूनिट में है, मैस हवलदार है, और वो गुज़श्ता 30 साल से मैस के खाते में प्लस माइनस कर रहा है, आपके अकाउंट में खाना खा लेता है, मेरे अकाउंट में खाना खा लेता है, बेटा आता है तो उसको मेरे बेटे के नाम पे खाना खिला देता है और मेरे हिसाब में लिख देता है। एक दिन वो चुपचाप आपके कमरे में आता है और आके कहता है कि सर मैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ये बेईमानी कर रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर बड़ा लान तान कर रहा है मुझे, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये आइंदा बेईमानी नहीं करूँगा, सर मैं आपके इल्म में लाना चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने उसे माफ़ कर दिया। अब उसके साथ ही अगर कोई वहाँ और अहदेदार, जो कि नहीं होता, एक ही मैस हवलदार होता है, फ़र्ज़ कर लीजिए दूसरा मैस हवलदार भी है वहाँ, उसने कभी कोई बेईमानी नहीं की, जब उसने आके आपके सामने तौबा कर ली और गलती की माफ़ी मांग ली सच्चे दिल से, एंड यू आर कन्विंस्ड कि वो सच सच कह रहा है, तो आपके ख्याल में वो अपने उस गुनाह के मुआफ़ हो जाने के बाद ये मैं सवलदार और दूसरा मैं सवलदार एक हो गया कि नहीं हो गए? इसी तरह जब तक उस शख्स ने कलमा नहीं पढ़ा था, वो उसकी कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाह थे। अब चूंकि अल्लाह ने एक कानून ये बनाया कि जब कोई मेरे हजूर में तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, तो वो गुनाहों से बिल्कुल उसी तरह पाक हो जाता है जिस तरह के एक नया न्यूली बॉर्न बेबी। तो ये शख्स, उसको अल्लाह ने वो तौफीक दी कि उसने कुफ्र से तौबा की और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उतरते वक्त उसका पांव फिसला और मर गया। इसका मतलब ये है, जो ही उसने तौबा की कुफ्र से और
ایمان لے آیا رب تعالیٰ پر تو اس کے اس قانون کے تحت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. اب وہ اتنا ہی انوسنٹ تھا جتنا کہ ایک نیولی بورن بیبی, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوا ہے مرنے کے بعد تو گناہوں سے بالکل پاک ہے, تو اس لیے اس کا درجہ بلند ہے. ہاں البتہ اس طرح سے ہوتا کہ وہ قتل ہونے سے بچنے کے لیے جھوٹ یہ کہتا کہ میں ایمان لے آیا, اور پھر وہ گر کے مر جاتا. تو اب اس نے چونکہ مصلحت کے تحت یہ فکرہ زبان سے نکالا تھا, دل سے نہیں ہوا تھا مسلمان, تو اس کو گناہوں کی سزا مل جاتی. تو اس کے پیچھے تو وہ یہ ہے, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں قادری صاحب, درست ہے جو, کہ اللہ سے اگر توبہ کر لی جائے, معافی مانگ لیا, جیسے میں نے آپ کو اس میں سولدار کی مثال آپ کو دی, تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے آپ اس کو میں سولدار کو ایک بار معاف کرنے کے بعد, اسے معافی دینے کے بعد کبھی زندگی بھر رپیٹ نہیں کریں گے اس کی کوتاہیاں. تو رب تو پھر رب ہے, کہیں بڑا ہے. تو رب تعالیٰ کسی کو کہ پچھلے گناہوں کو ریمائنڈ نہیں کرائے گا, نہ سزا دے گا, معاف کر دے گا. وہ جو آپ نے بات کی, رولز اینڈ ریگولیشنز میں کہیں کسی کے لیے کمی نہیں کی جاتی, نہ کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے, چاہے وہ ٹریفک کے لاز ہوں یا گھوڑ دوڑ کے. کیونکہ گھوڑا تم خو ہے, غصہ ور ہے, تو اس کے لیے رولز مختلف کر دیے جائیں. وہ اس کے ٹرینر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا ٹرین کرے کہ وہ ریس کے قوانین کے مطابق دوڑے, اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ ریس سے آؤٹ کر دیا جائے گا, اور اگر زیادہ پاگل ہوگا تو اسے گولی مار دی جائے گی. اسی طرح ٹریفک لاز کے اندر جب آپ لائسنس لے کر ایک وہیکل جس کو روڈ فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اس کو سڑک پہ لے کے جاتے ہیں, تو ار ریسپیکٹیو آف اٹس ہارس پاور, ار ریسپیکٹیو آف اٹس کائنڈ اینڈ ٹائپ, ٹریفک رولز ونس اٹ کمز آن روڈ اٹ از ٹریٹڈ ایٹ پار ود ادر وہیکل. اسی طرح اگر آپ ڈرائیور ہیں, آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کورٹ میں کہ صاحب میں ال ٹرینڈ ڈرائیور ہوں. اگر آپ کو لائسنس ایشو ہو گیا ہے ایک بار تو آپ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ لاکھ کورٹ میں کہیے تھا میں ایل ٹرینڈ ہوں, تو وہ سزا دگنی ہو جائے گی, کم نہیں ہوگی. کہ جب آپ کو اپنی ویکنیس کا پتہ تھا کہ آپ کو ڈرائیونگ صحیح نہیں آتی, تو آپ نے دوسروں کی زندگی کو ایٹ رسک کیوں کیا؟ آپ کو اپنے آپ کو پہلے پختہ کرنا چاہیے تھا, اور جس نے لائسنس ایشو کیا اس آدمی کی بھی شامت آ جائے گی کہ آپ نے اسے پراپرلی ٹیسٹ کرنے کے بعد لائسنس کیوں نہیں کیا. تو سزا بڑھ جائے گی, کم نہیں ہوگی. جی جی کلام الوجہ نہیں, اجر تو زیادہ ہوگا. اسلام کے قوانین میں کوئی اس کے لیے لچک نہیں, اجر تو اس کو بڑھ جائے گا کہ اس نے یہ دیکھتے ہوئے, پہلے تو اس نے خود شناسی کی, اپنے آپ کو پہچانا ہے, اور پھر اس نے ایک ایفرٹ کی ہے اپنی خامی کو دور کرنے کی. یہ بالکل اس طرح سے ہے, آپ کا ایک ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, اس کو ایک ایسا کوئی ایک ایسی عادت لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ آپریشن کرے تو ہیزرڈز بڑھ جاتے ہیں. آپ اس کو اس خامی کی وجہ سے آپریشن کرنے نہیں دینا چاہتے, آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے, اس کی وجہ سے جب تم آپریشن کرتے ہو تو تمہارا ہاتھ بہکتا ہے اور مورٹیلیٹی ریٹ بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ تم لوگوں کی زندگی سے کھیلو. تو وہ بندہ فوراً ایفرٹ شروع کر دیتا ہے اور اپنی اس خامی کو کنٹرول کر لیتا ہے, قابو کر لیتا ہے. پھر جب وہ آپریشن تھیٹر میں آتا ہے, آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ بالکل یاد ختم ہو گئی اس کی, تو آپ جگہ جگہ تعریف اس کی کریں گے یا نہیں کریں گے کہ لک ایٹ دس مین, اس کے اندر یہ اتنی زبردست خرابی تھی, لیکن آئی ٹیک مائی ہیٹ آف فار دس مین کہ اس نے محنت کر کے اپنی یہ عادت ختم کر لی. ناؤ ہی میکس این ایکسلنٹ سرجن. تو سرجری کے قواعد میں تو کوئی لچک نہیں پیدا ہوئی اس آدمی کے لیے. اس آدمی نے اپنے آپ کو چینج کیا
उस मयार पर लाने के लिए जो सर्जन के लिए जरूरी है। तो चूंकि उसने मेहनत की, अपने आप को काबू में ले आया और उस मकाम पर ले आया जहां के एक अच्छा सर्जन बन सकता है, तो उसकी तारीफ शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह के नज़दीक वो इंसान जिसने सारी उम्र गुनाह नहीं किया और उसके मुकाबले पर ऐसा इंसान जो गुनाह करता रहा फिर तौबा करके नेक हो गया और गुनाह नहीं किए, इन दोनों में से उस आदमी का दर्जा ज़्यादा बुलंद है जो गुनाह करता रहा और तौबा करने के बाद फिर उसने गुनाह नहीं किए। क्योंकि नेक इंसान ने तो गुनाह की लज्जत को चखा ही नहीं, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। ये इंसान तो गुनाह की लज्जत हासिल करता रहा एक लंबा अरसा और उस लज्जत का आदी हो गया, फिर इसने अपने ऊपर जबर किया, कंट्रोल किया, अपने नफ्स को मारा और गुनाह की लज्जत को एक तरफ करके नेकी की तलखी की तरफ आया। इसलिए इसका दर्जा ज्यादा बुलंद है उस आदमी की नज़र। देखिए अल्लाह ताला के नजदीक ये बड़ा क्लियर कट है मामला कि एक इंसान जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होता, बालिग नहीं होता, उस वक्त तक उसको सिखाना उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर माँ बाप नहीं सिखाते तो कोताही कर रहे हैं, उसके लिए वो जुर्मवार हैं और उसकी जवाबदेही उनके ज़िम्मे है। लेकिन जब एक शख्स बालिग हो गया तो फिर इल्म की तलाश करना, हक और सच की बात को तलाशना, ये उस पे अपने ऊपर फ़र्ज हो गया। तो बालिग होने के बाद, होश संभालने के बाद, जो होशमंद हो गया है तो अपनी कोताहियों का जिम्मेदार ये खुद होगा। तो रब ताला ने इसीलिए अपने आप को इस इल्ज़ाम से बरयुज़िम्मा कर लिया कि 1,24,000 पैगंबर उसने बार बार हर कौम की तरफ भेजे। चूँकि दीन मुकम्मल हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आखिरी पैगाम लेकर आए थे, तो दीन के मुकम्मल हो जाने की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान कहलाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मान नहीं हैं कि वो आखिरी नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान इसलिए हैं कि आप जो पैगाम लेकर आए उसके साथ ही पैगाम मुकम्मल हो गया था। अब किसी पैगाम के मज़ीद आने की कोई ज़रूरत थी नहीं, आना नहीं था, इसलिए किसी पैगंबर ने भी नहीं आना था। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। तो चूंकि पैगाम मुकम्मल हो गया, नबी का आना बंद हो गया, तो उलमा पर ये ज़िम्मेदारी डाल दी गई कि कल तक जो काम पैगंबर करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, उस कौम के आलिम ये सारे काम सर अंजाम देंगे। तो तीन चीज़ें हैं कि आकिलो बालिग होने से पहले तक अगर किसी को कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं तो उसका जुर्म उसके माँ बाप पर आयद होगा और उसकी जवाबदेही वो करेंगे। उसके बाद जब वो आकिलो बालिग हो गया तो उस पर ये फ़र्ज हो गया कि वो हक की तलाश करे, इल्म सीखे, उसमें उसने कोताही की तो उसकी सज़ा और उसकी जवाबदेही उसके ज़िम्मे है। फिर तीसरी चीज़ ये होगी कि उलमा से ये पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने अपनी हिम्मत के मुताबिक इस पैगाम को फैलाया कि नहीं फैलाया, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तुम्हारे स्पुर्द कर दी गई थी। तो बेसिकली हमें खुद आगे बढ़ के इसकी तलाश करना है कि हक कहाँ है। इन बातों को सीखिए किताबों से, उलेमा से सीखिए। जो चीज़ें आपको किताबों से समझ नहीं आती, वो लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। अगर बताने से इनकार करेंगे तो जुर्मवार होंगे वो। नहीं, ये फ़िरके का मसला ही नहीं रहेगा। अगर आपने कुरान को समझने की कोशिश की तो कुरान की हद तक फ़िरका नहीं है। फ़िरके जो वजूद में आए हैं वो फ़िकह पर आए हैं, कुरान पर कोई फ़िरका नहीं है। जी जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। कुरान पर कहीं कोई फ़र्क नहीं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं कुरान पर।
کیونکہ قرآن پر اگر اختلاف کر لے گا تو پھر تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے. جو تفرقہ بازی ہے وہ فقہ پر ہے, قرآن پر نہیں. تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ آپ سمجھنے جائیں گے کسی سے, تو آپ کو ترجمہ وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ, کیونکہ الفاظ ایک نہیں رہ سکتے, الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترجمہ وہ ایک ہی بتائے گا آپ کو, اس کا مفہوم, اس کا معنی ایک ہی بتائے گا. ایسا ہے کہ وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ جس طرح نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی شخص نے نیکی کتنی کی, رب تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی نیکی کی نیت تھی, اور پھر اس شخص نے اپنے اس نیت اور ارادے کے تحت نیکی کے لیے ایفرٹ کیا کی, اس ایفرٹ پر وہ اجر دے دے گا. یہ ضروری نہیں کہ اس ایفرٹ کا نتیجہ نکلا ہوا ہو, صرف یہ ہے کہ اس نے صدق دل سے, اخلاص کے ساتھ, اگر پوری تندہی سے کوشش کی لیکن نیکی کر نہ پایا کسی وجہ سے, تو اس کو نیکی کا اجر دے دیا جائے گا. تو ایسا شخص جس کا انوائرمنٹ ایسا, افریقہ کے کسی دور دراز جنگل میں رہنے والا شخص, اگر اپنے وسائل اور اپنی جسمانی قوت کے اندر رہتے ہوئے تمام تر کوشش کرتا ہے, پوری تندہی سے کوشش کرتا ہے کہ مجھے حق اور سچ مل جائے, تو جس حد تک ملتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے, اور جو اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اسے میسر نہیں ہو سکا, تو رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. بجا فرمایا, نہیں میں نے تو بڑی کلیئر بات آپ سے عرض کی تھی کہ خاندان کے جتنے عاقل و بالغ لوگ ہیں ان پہ فرض ہے علم کی تلاش. اگر گھر کا وہ فرد نہیں انہیں تعلیم دے پا رہا تو نزدیکی ادارے جو ہیں ان میں علماء کو سے رجوع کرے گا. وہ دوسرے اس کے جاننے والوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب علم ہیں, ان سے رجوع کرے گا. یہ اس کی ایفرٹ ہے اور اس ایفرٹ کا اجر اس کو دیا جائے گا. جو گھر کے اندر پڑھا لکھا ہے, جو جانتا ہے, اگر اس نے کوتاہی کی ہے سکھانے میں, تو اس کے لیے جواب دہی وہ کرے گا, کیونکہ یہ اس پر فرض تھا کہ وہ ان لوگوں کو جو خاندان میں اس کے قریبی عزیز و اقارب ہیں, اس کے ایکسس میں ہیں, اگر وہ دیکھ رہا تھا کہ انہیں نہیں کچھ آتا اور وہ تگدو کر رہے ہیں سیکھنے کی, تو اس پر فرض تھا کہ انہیں سکھاتا. جو جس میں کہ اس نے کوتاہی کی اس کی جواب دہی اسے کرنا ہوگی. دیکھیے دنیاوی معاملات میں بھی میں گزارش کروں کہ میرے دوست ہیں کرنل محمود, میں ان سے کہتا ہوں کہ کرنل صاحب آپ میرا فلاں کام کر دیجئے, جائز کام ہے, حق میرا بنتا ہے. کرنل صاحب دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن 15-20 دن کی محنت کے باوجود یہ اس کو کر نہیں پاتے. تو کسی بھی مورل سٹینڈرڈ سے میں ان سے شکوہ نہیں کر سکتا,